जय जय श्री राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मौदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम् ॐ अज्ञानस्य निरन्धस्य ज्ञानेन्द्रस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु नम ॐ विष्णुपादाय विष्णुप्रस्थाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी कृष्ण कथा प्रेमी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कि इतनी कड़ी धूप में भी आप वैष्णव श्रीमद् भागवत से कृष्ण कथा से प्रीति रखते हैं, रुचि है, अनुराग है, इसलिए आप सभी यहाँ पधारे हैं। यही प्रमाण है प्रेम का। श्री राधा रानी श्रीधाम वृंदावन में जब कृष्ण मथुरा गए तो कृष्ण के विरह में इसी ग्रीष्म ऋतु में रूप गोस्वामी ने लिखा है, एक पत्थर होता है जिसका नाम होता है सूर्यकांत मणि, जो सूर्य की किरणों से वो पिघलता है और अंगारे की समान लावा की समान लाल हो जाता है गर्म। और प्रिया जी के चरण, राधा रानी के चरण तो कमल से भी कोमल है, लेकिन कृष्ण विरह की उन्मादता है कि वो वक्ष पर खड़ी रहकर मथुरा की ओर दृष्टि किए कि मेरा श्याम सुंदर मेरे प्राण प्रियतम इस दिशा में गए हैं और उनकी राह उनकी बाट जो रही है। और उसी समय वो पत्थर पिघलने लगता है, पूरा पांव में छाले पड़ जाते, लेकिन कृष्ण प्रेम जो हृदय में इतना है कि इसके अनुसार शरीर की कोई सुध-बुध नहीं, यही प्रेमी का लक्षण है। भरत महाराज जब चित्रकूट जा रहे थे, रामायण में वर्णन है, तो नंगे पैर जा रहे थे चलते हुए श्री राम के दर्शन के लिए। और जैसे ही वो त्रिवेणी इलाहाबाद में पहुंचे भरत जी, राम के छोटे भाई भरत, तो उनके पांव में भी छाले पड़ गए। उस कभी राजकुमार है ना, कभी नीचे चले नहीं है, लेकिन राम मिलन की हृदय में जो लालसा थी उसके कारण शरीर का दुख कोई अनुभव नहीं था। और फिर आप शरीर समझते ही इस बात को कि गर्मी में नंगे पांव भूमि पर चलने पर पांव में छाले हो जाते हैं और वो पानी से भी भर जाते हैं। कभी परिक्रमा में ब्रजमंडल में हम भक्तों को देखते हैं, जल का झलकत पायन कैसे पंकज कोस अशोकन जैसे। रामायण की गोपी और प्रेमी भरत के चरणों में जो लाल लाल छाले पड़े हुए थे, पानी से भरे हुए थे, कैसे लग रहे थे? तो गोस्वामी लिखते हैं कि जैसे कमल की पंखड़ियों पर जाकल जो बिंदु पानी का जो श्वेत बिंदु पड़ता है मोती जैसा चमकता है। पंकज कोस, पंकज मतलब कमल की पंखड़ी पर पड़ा हुआ जो जल बिंदु शोभा देता है ऐसे शोभा दे रहा है। ये है प्रेमियों की बात। भक्तों, आज के आधुनिक युग में सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि मुझे ज्ञान है। इसलिए वास्तविक ज्ञान यह है कि मुझे ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञानियों की निंदा नहीं करता, ना मैं खुद ज्ञानी हूं, लेकिन ज्ञानी लोग किंतु परंतु में उलझ जाते हैं। इसीलिए प्रेमी जन कहते हैं कि किसी कृष्ण प्रेमी रसिक वैष्णव से श्रीमद् भागवत जब तक नहीं सुनेंगे तब तक भक्ति और भगवान नहीं मिलेंगे। ये नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने बंगला पद में लिखा है प्रेम भक्ति चंद्रिका में, तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाए घन श्याम। तार भक्त संग सदा, कृष्ण प्रेमी भक्तों के संग में क्या करना चाहिए? रस लीला प्रेम कथा उसी कृष्ण की और कृष्ण के पवित्र भक्तों के चरित्र को सुनिए। जे करे, जो ये करता है, से पाए घन श्याम, वो कृष्ण को पाएगा। तो प्रेमी भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। श्री गिरधारी और जगन्नाथ जी की महाकरुणा है कि आप सभी हम सभी वैष्णवों को ये श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर मिलता है और उसी भक्तों के संग में उसी भगवान के चरणों में बैठ कर और प्रसाद रेडी है, बोलो, ये भी एक सुविधा है। प्रसाद इंतजार कर रहा है, चाहे हम प्रसाद का इंतजार कर रहे हो, जो भी हो, तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा बताइए। लेकिन जगत एक है, जगत के नाथ भी एक है, लेकिन कलयुग का प्रभाव है कि जगत गुरु अनेक है। जगत गुरु की बटालियन खड़ी हो गई, पूरी आर्मी खड़ी हो गई है, इसको भी पूछो जगत गुरु, छोटा मोटा गुरु बनना ही नहीं उनको। जगत के किसी कोने में उसके 5-10 मूर्ख चेलों के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता उसको, लेकिन वो चेले लोग कहते कि हमारे गुरु क्या है, जगत गुरु। रोग हो गया है, किसी को दास नहीं बनना कृष्ण का, सबको गुरु बनना। और कृष्ण तत्व तो जानते नहीं, वो खुद क्या है वो भी नहीं जानते। प्रभुपाद रशिया में एक प्रोफेसर से मिले तो प्रोफेसर प्रभुपाद से बात करते हुए, वो पादरी क्रिश्चियन चर्च में थे, वो साथ में था, तो कहते स्वामी जी आफ्टर दैट एवरीथिंग इज फिनिश, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, सब जीरो है। तो प्रभुपाद जी थोड़ा हंसे उसकी मूर्खता पर, ये लोग जानते ही नहीं कि मरने के बाद भी जीवन है। आत्म तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जानते, यहां वहां घूमते, इदम तीर्थम भ्राम्यति तामसा जना आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षम भवेत्। अपने आप के विषय में ज्ञान नहीं, અમારા ગુજરાતીમાં જેને પોતાની નો ખબર હોય એને ગાંડો કહેવાય, હિન્દીમાં ક્યાં કહેતો પતા નહીં, પાગલ કહેતો પતા નહીં, મેડ જીસકો અપના હી ધ્યાન ના હો, સહા જાના એ પતા હી નહીં, ઉસકો ક્યા કહેંગે, મેડ. અપને આપકો બડા બડા સ્કોલર બતાતે હૈ લેકિન ખુદ ક્યા હૈ ઉસકો નહીં પતા. તો પ્રભુપાદજીને કહા કે આપ ભગવદ્ ગીતા કહેતી હૈ કે ન હન્યતે હન્ય માને શરીર નિત્ય. લોક કહેતે કે હમ ચાંદ પર જાકર આયે, વહાં પર કોઈ જીવ નહીં હૈ. ઓર ગીતા મેં કૃષ્ણ કહેતે સર્વગત, જીવ સબ જગા હૈ, કોઈ એસા પ્લેસ નહીં જ્યાં જીવ નહીં, ભલે ઉસકે અનુસાર ઉસ શરીર મેં હોંગે, જલ મેં જલ કે અનુસાર જીવ હોંગે, જલચર હોંગે, નભ મેં નભચર હોંગે, ઇવન અગ્નિ મેં ભી બેક્ટેરિયા હૈ, હવા મેં ભી જીવ હૈ, બતાઓ. લેકિન મૂર્ખો કો દિખતા હી નહીં. ઓર ફિર કહેતે વહાં કુછ નહીં હૈ, સબ ખાલી હૈ, તેરા દિમાગ ખાલી હૈ. और ऐसे लोग टीचर है, ऐसे लोग गुरु है. प्रभुपाद कहते हैं अंधेर था अंधेर उपनीय माना, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अंधे के पीछे अंधा चल रहा है. कैसे मंगल होगा बताएं. एक कहावत है हिंदी में कि बुद्धिमान विद्वान लोग जहां जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, मूर्ख लोग वहां दौड़ते हैं. इस श्लोक में देखो लिखा गया है तीसरी लाइन में, श्रुत्वा स्वधामनो अंति अज आगतो अचिराज. अज ब्रह्मा जी का नाम है, अज नाम ऐसे कृष्ण का भी है लेकिन ब्रह्मा जी को भी अज कहते हैं. वो किसी स्त्री से जन्म नहीं लिए, स्वयंभू भगवान के नाभि कमल कमल से प्रकट हो गए. आजकल कोई दूसरा कोई जीव नहीं जो कमल से निकला, विश्व का सबसे बड़ा इंजीनियर कमल से निकला है ब्रह्मा. लेकिन श्रुत्वा जैसे ही उन्होंने सुना, अंति निकट, अंति मतलब पास में आ गए, अचिरा तुरंत आ गए. कहां आ गए? श्री वृंदावन में. क्योंकि उन्होंने सुना कि वृंदावन में उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है. कृष्ण ने अगासुर को मारा तो देवता लोग नाच गान सब आनंद में थे और सखा लोग भी आनंद में आ गए थे. तो ये आनंद उत्सव कीर्तन ब्रह्मा जी ने अपने लोक में सुना. तो प्रभुपाद जी लिखते कि ब्रह्मा के लोक में सुना, तो पृथ्वी पर भौम वृंदावन में लीला हो रहा है कृष्ण का, और ब्रह्मा ने ब्रह्म लोक में सुना, तो उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं ना, स्वर्ग लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, तो बीच में होकर सीधा पास तो आवाज जाएगा नहीं, वाया होते हुए जाएगा ना. तो स्वर्ग वालों ने भी सुना, तप लोक वालों ने सुना, जन लोक, लेकिन ब्रह्मा ने सुना तो अचिरात आगतम, वो तुरंत आ गए कि भाई कहां कीर्तन हो रहा है. जैसे आप लोग आ गए, वो लोग कथा होने वाला है एक से दो, बाद में प्रसाद भी है इसलिए भी कुछ लोग आए होंगे, लेकिन फिर कथा भी है. सुत्वा सुना है, अचिरा तुरंत आ गए ब्रह्मा जी जो सबसे मुख्य है. कृष्ण कथा से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं. जानने के लिए कीर्तन कहां हो रहा है, उत्सव कहां हो रहा है, आनंद कहां है. तो प्रभुपाद लिखते कि जन लोक में भी सुनाई दिया, तप लोक में भी सुनाई दिया, सब लोक में ये कृष्ण का कीर्तन हो रहा है. और वे ब्रह्मा जी भागवत में नारद मुनि अपने पुत्र से कहते हैं, भागवत 2:5:12, तस्मै नमः भगवती वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुस्त्यजं मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु. नारद नारद जी ने देखा कि मेरे पिताजी सृष्टि कर रहे हैं, तो लगता है कि यही इनकार्नेशन के मूल स्रोत है, सब इन्हीं से आ रहा है. इसलिए पूछा, पिताजी आप क्या भगवान है क्या, सब आप जगत गुरु है क्या, सबको ज्ञान दे रहे हैं, सब ऋषि मुनि आपसे आ रहे हैं, 84 लाख जीवों की सृष्टि कर रहे हो आप. तब ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा तस्मै नमो भगवती वासुदेवाय, वो जो परम भगवान श्री वासुदेव है जिनका मैं ध्यान करता हूं, जिनका मैं भजन करता हूं, और उनकी आज्ञा से उनकी कृपा से, तो वह इच्छा करे ब्रह्मा, ब्रह्मा करे न सुजन. भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा ना, तुनी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन, तो उनकी आज्ञा से उनकी कृपा से उनका भजन करके मैं ये कर रहा हूं. लेकिन यन माया दुष्टजन, जिनकी दुष्कर माया से मोहित हुए जीव, माम ब्रुवंती जगत गुरु, मुझे कहते हैं कि मैं हूं जगत गुरु. ब्रह्मा क्या है, हमारे मूल संप्रदाय के आदि, हम ब्रह्म संप्रदाय से है ना, गौड़ीय परंपरा. लोग मुझे कहते हैं कि मैं हूं गुरु, लेकिन असली गुरु कौन है, वासुदेवाय धीमे। चीटिंग नहीं किया, ब्रह्मा असली गुरु है। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण गुरु है, लेकिन उसी कृष्ण की बात बिना बदले एज इट इज कहे वो भी गुरु है। कृष्ण गीता में कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, तो असली गुरु होगा वो कहेगा कि कृष्ण की शरण में जाओ, लेकिन ये भी दोहराता है माम एकम शरणम व्रज, न तो कृष्ण माम एज इट इज गुरु हो गया। असली गुरु होगा वो कृष्ण की शरण में जाने को कहेगा, क्योंकि कृष्ण जगत गुरु है, वो भगवान है, वो कहते मेरी शरण में आओ, तो ये भी मूर्ख लोग कहते मेरी शरण में आओ। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, सही व्यक्ति से समझना पड़ेगा, समझने से पहले तो सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए जागना पड़ेगा कथा में, सब बातें है ना, सो ही जाएंगे तो क्या सोचेंगे बताओ। फर्स्ट कंडीशन हमको जागना है पहले, तुम फिर सुनना है, फिर समझना है, फिर उतार, वो तो सब नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया। तो माम ब्रुवंति जगत गुरु, देखो ब्रह्मा जी ने चीटिंग नहीं किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, लेकिन गुरु कौन है? वसुदेव सुतम देवम, महाभारत में व्यास जी ने लिखा, कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु। इसलिए वृंदावन के संत कहते अनायिका विनश्यंती, जिसका कोई गुरु नहीं, जिसका कोई नायक नहीं, लीडर नहीं, विनश्यंती विनश्यंती बहु नायिका, जिसके बहुत लीडर है वो भी मरेगा, क्योंकि डिसीजन ही नहीं होगा। जितनी कुंडी उतनी मुंडी, उतनी बुद्धि, अलग अलग सब अलग अलग यज्ञ करा रहा है। तो अनायिका विनश्यंती, विनश्यंती बहु नायिका, कुनायिका सत्य विनश्यंती, और नकली कु गुरु मिला है, बेकार बुद्धू शास्त्र ज्ञान शून्य पाखंड शिरोमणि। अगर ऐसा कहीं मिल गया तो सत्य विनश्यंती तरिष्यंती सुनायिका, जिसको कृष्ण तत्व वेता परंपरा में आने वाला भागवत शास्त्र का वेता हूं, वैष्णव गुरु मिला है तरिष्यंती, वो क्या हो जाएगा? भवसागर से पार हो जाएगा। ये बात हमें समझना। इसलिए कृष्ण की शरण तक पहुंचने के लिए उसके प्रेमी भक्त जो वैष्णव गुरु जो उनके प्रतिनिधि है उनकी शरण लेना पड़ता है। आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे नाही केजे आर सब मरे अकारण। जो कृष्ण भक्त की शरण लेकर भगवान कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण उसको त्याग ही नहीं सकते, दूसरे तो सब मरेंगे। भक्तिनाथ ठाकुर कल्याण कल्पतरु में लिखते हैं। इसलिए प्रेमी भक्तों की मैं बात कर रहा हूं, जो भागवत से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे भक्त का संग मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, तो हम मुर्दे से जिंदा हो जाएंगे। बिना भक्ति के सब मरे हुए माने जाते हैं, जिंदा लाश। किसी कवि ने कहा है कि कुछ लोग किसी के माल पे मरते हैं, कुछ लोग किसी के गाल पे मरते हैं, कुछ लोग किसी की बाल पे मरते हैं, कुछ लोग किसी की चाल पे मरते हैं, सब मरते ही है वास्तव में, लेकिन जिंदा है वो जो देवकी के लाल पर मरते हैं। वास्तव में वही जिंदा है जो जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णा वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जो रथ पर विराजित थे सुभद्रा और बलराम के साथ, उनको देखते हुए गौरांग में आंखों में अश्रु प्रेमाश्रु जल भरते हुए यही श्लोक से प्रार्थना किया था, जो मूल श्लोक कुलशेखर अलवार मुकुंदमाला स्तोत्र से है। ये जयति जयति देवो देवकी नंदनो, तो वही जिंदा है जिसने देवकी के लाल को अपना माना है, क्योंकि गर्गाचार्य ने नामकरण करते हुए कह दिया था भागवत में, जो त्रिकाल ज्ञानी माने जाते हैं, यदुओं के पुरोहित माने जाते हैं, महामुनि गर्ग, जिसकी वेदों में बड़ी विख्यात ख्याति प्राप्त है, और वे गर्ग कहते हैं यस्य प्रीति कुर्वन्ती मानवा, हे नंद बाबा इस त्रिभुवन में सबसे सौभाग्यशाली वह जीव है जो आपके इस लाल से प्रेम करता है, उसका कभी विनाश नहीं होगा, उसको कोई मार नहीं सकता। कृष्ण से प्रेम करने वाले की महिमा वेदों में, शास्त्रों में, संतों के मुख पर कूट कूट के भरी गई है, बस हम जानते नहीं, है हमारा दुर्भाग्य, और इसलिए हम हमारे आए हुए सौभाग्य को भी पहचान नहीं पाते, हमारे आए हुए इस सौभाग्य को भी हम नहीं पहचान पाते। इसीलिए जब भक्त के संग में आते हैं, कृष्ण प्रेमी किसी वैष्णव की शरण में आते हैं, तब असली जीवन चालू होता है, बाकी तो जीते ही मुर्दा है, जीते हुए भी मुर्दा घूम रहे हैं लोग अज्ञान में, मूर्खता में। महाराजा प्रताप रुद्र की एक छोटी सी बात, हम जगन्नाथ अभी अभी अनाउंस किया प्रभु जी ने कि रथ यात्रा है, तो हमारा मन भी उसी में है, कुछ उसी के विषय में बताते हैं, तो ऐसे फिक्स विषय नहीं था, लेकिन जो भी जो बोले सो हरि कथा, भागवत से कुछ भी कहा जाए, रामायण से कहा जाए, गीता से कहा जाए, ये शास्त्र भगवान के स्वरूप है। कृष्णेर प्रकाश, कृष्णेर प्रकार त्रिविध, कृष्णेर विलास त्रिविध प्रकार, शास्त्र श्री विग्रह और भक्त कलेवर। भगवान के प्रेमी भक्त वैष्णव ये भगवान के ही विलास माने जाते हैं, और ये शास्त्र भागवत उन्हीं का स्वरूप है, और विग्रह साक्षात वही है। तो श्री जगन्नाथ जी के शरण में आप बैठे हो, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी है और उसको नंबर नहीं है, एक बड़ा है, उसको मोतियाबिंद कभी नहीं आता, उसको कोई नंबर चश्मा कुछ नहीं, वो बड़ी दूर की देख लेते हैं, अंदर की भी देख लेते हैं, बोलो ऐसे ही भगवान को पकड़ना चाहिए ना, जो अपना ही नहीं देख सकते उनको क्या देखेंगे। इंद्र को हजार आंख है लेकिन सब बेकार है, सहस्त्राक्ष, तो ऐसे ही मूर्ति वाली झड़ आंख है इंद्र को, क्या फायदा। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी कमल नयन, उसकी आंखें बड़ी बड़ी चाका डोला, उसको उड़िया में क्या कहते चाका डोला, और जगबंधु है गोसाई, उस पर क्या साल बेग ने गाया है ना, प्रभु चाका डोला हूँ, कब मैं देखूंगा चाका डोला को, भगवान जगन्नाथ को बड़े प्रेमी है, दयालु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने याद किया है, दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम धाम में दारू ब्रह्म के रूप में द्वारिकाधीश जो द्वापर के श्री अवतार थे, स्वयं अवतार थे, वो कलयुग में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, दारू ब्रह्म के रूप में। तंत्र यामल में लिखा गया है, भारते चौत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारू रूपो श्री जगन्नाथ भक्तानाम भय प्रद। ऐसा हिंदी में भी समझ में आ जाए ऐसी बात, भारते, भारत में भी कौन सी भूमि, उत्कल क्षेत्र, उत्कल में भी पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो भूस्वर्ग जो पृथ्वी का वैकुंठ माना जाता है, और वहां कौन विराजते, बोले दारू रूपे, दारू मतलब कास्ट लकड़ी आपकी हिंदी में, श्री जगन्नाथ क्यों बिरा, भक्ता नाम अभय प्रद, भक्तों को अभय देने के लिए विराजते हैं, इसलिए दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संपत्ति, कलयुग में कृष्ण प्रकट है दारू के रूप में और जल के रूप में, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और दारू रूपे श्री पुरुषोत्तम है। ऐसे दारू शब्द का क्या अर्थ होता है, बड़ा खराब अर्थ आप लोग मत समझे, बम्बई वाले हैं, देसी मत लगाइए उसके, ऐसे विदेशी मत लगाइए, क्योंकि लो लो इंटेलिजेंट वहीं जाती है। एक पुणे में एक भक्त सुना रहे थे शिक्षास्त्र कम प्रभु, हमारे गोपीनाथ मंदिर से एक भक्त गीता बांट रहा था, तो गीता सार पुस्तक है ना हमारी छोटी सी, वो 10 रुपये में थी, अब तो पता नहीं कितना है, पहले 10 साल पहले, तो ऐसे ही मराठी में बोले फक्त 10 रुपया, फक्त दारू पिया, फक्त 10 रुपया, तो दारू पीने को क्यों कह रहा है, तो ये मराठी में 10 रुपया, लेकिन वो फास्ट बोला दारू पिया, फक्त दारू पिया, पानी मत पिया, फक्त दारू। अब क्या बताया जाए, बेचारा वैसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन भाषा भाषा ऐसी भ्रम हो जाता है, फक्त 10 रुपया, 10 रुपया, दारू पिया, खतरा हो जाता है, तो समझते नहीं बढ़िया, अज्ञान में फक्त 10 रुपया। दारू ऐसे संस्कृत में दा धातु है, उसके दो अर्थ होते हैं,
बड़ा एक सुंदर श्लोक है, खंडनाथ सर्व दुखानां अखंड आनंद दानत स्वभावत दारु रुहश्याम ही परब्रह्म विधीयते। ये परब्रह्म गोपाल तापनी उपनिषद श्री कृष्ण को परब्रह्म कहते हैं व्यास भगवान, तो उसको दारू क्यों कहा गया परब्रह्म को, परम सत्ता को दारू शब्द क्यों लगाया गया हमारे शास्त्रों में, इसका अर्थ यह है दा धातु से दो शब्द प्रकट होते हैं संस्कृत में, एक दा शब्द का होता है खंडन करना काटना विनाश करना और एक दा शब्द का होता है देना दान देना, दो अर्थ। तो कहते खंडनाथ, अगर खंडन अर्थ किया जाए दा शब्द का तो सर्व दुखा नाम सारे जगत के भक्तों का अपने प्रेमियों का जो दुख का क्या करते हैं पाप का क्या करते हैं खंडन करते हैं, और दूसरा अर्थ लिया जाए दानक दान देते हैं, क्या देते हैं जो सुख देते हैं जो आनंद अखंड आनंद दानक, ये दुनिया वाले तो दुख देते हैं कुछ आनंद देते हैं तो 100 किलो 100 ग्राम सुख के साथ एक मण 1 क्विंटल दुख देंगे बोले, फॉर एग्जाम्पल पत्नी जिंदा शहीद लोग इसको समझ सकते हैं, शादी किया मतलब जिंदा शहीद हमारी भाषा जिंदगी जीते ही शहीद हो गया घोड़े पर चढ़कर, वो लोग सोच सकते इस बात को कि थोड़े के सुख के साथ कितना दुख साथ में आता है उसको पता नहीं, दुखेशु सुख माने न मूर्खतावश। लेकिन भगवान अखंड आनंद देते हैं, खंडनाथ सर्व दुखानाम अखंड आनंद दानत, और दूसरा शब्द है रू, रू प्रत्यय का अर्थ होता है स्वरूप स्वभाव, स्वभाव दारू येषाम ही परब्रह्म इति धीयते। उपनिषद कहता है कि दारू क्यों कहते हैं कृष्ण को, जो जीव के आत्मा के अपने भक्त के सारे दुख खंडन करते हैं और अपना स्वरूप अपना स्वभाव आनंद दान करते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को दारू कहते हैं। दारू ब्रह्म जगन्नाथ की भागवत 11:27-12 उद्धव जी को श्री कृष्ण कहते हैं, शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या सैकतिम मणिमयी मनोमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। मैं विग्रह के रूप में 8 रूपों में आता हूं, प्रतिमा अष्टधा विधा अष्टधा, पहला शैली पत्थर के रूप में, पत्थर की प्रतिमा होती है श्रीनाथ जी हमारे नाथ द्वारा में स्वयं वो प्रकट हुए। दारुमयी लकड़ी की श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम, और लोही धातु की, जैसे किसी लोहे आदि की भी प्रतिमाएं आप पुरानी कहीं जगह जाओ तो दिखाई देती है, और लेप्या ऐसे कुछ भी नहीं है लेकिन किसी कागज पर या किसी मट्टी से लेप करके प्रतिमा बना देते हैं। देखिए ना, हम जगह हम जैसे गोवर्धन उत्सव करते हैं तो किसी कागज पर कूठे पर प्लास्टिक पर ऐसे वो गोबर की या किसी भी किसी रॉ मटेरियल की भी ऐसी प्रतिमा लेप से चंदन आदि से प्रतिमा बना देते हैं। लेख्या पेंटिंग चित्र की भी प्रतिमा होती है, चित्र है ना भगवान, सैकती माटी की भी प्रतिमा बनाई जाती है, मट्टी की बनाते केवल मट्टी, न पत्थर न धातु न कुछ नहीं, और मणिमयी ओनली फॉर ज्वेल केवल मणियों की भी प्रतिमा बनाते हैं, और कुछ न हो तो मनोमयी अपने मन में भी भगवान के रूप को। ध्रुव महाराज ने जब नारद जी मिले, भागवत में कथा है, बोले याद स्मरण करो भगवान का अपने मन में, जिसको शंख चक्र गदा पद में मन में ही शंख बना लो चक्र बना लो उसका कलर ऐसा है, सारा वर्णन किया मनोमयी प्रतिमा अष्टधा, और याद रखिएगा ये प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्रलागी प्रकट करिया अकार कारण, आप भी भगवान किसी भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं, श्री विग्रह नहीं सच्चिदानंद रूप है, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, और यहां तक लिखा है चैतन्य चरितामृत में, प्रतिमान श्री विग्रह जैन माने से ही तपाषंडी, पाषंडी समझते है? श्री विग्रह जेना माने से ही तपाषंडी अदृश्य, उसको देखना नहीं चाहिए, अस्पृश्य उसको छूना भी नहीं चाहिए, से यम दंडी उसको तो यमराज बढ़िया से छुएंगे, हमको उसको छूना नहीं है ऐसे व्यक्ति को उसको देखना है, उसको देखना सुनना तो किसके हवाले है,
यमराज के हवाले, वो इसको बढ़िया से देखेंगे सुनेंगे ऐसे व्यक्ति को। इसलिए पद्म पुराण में व्यास जी ने लिखा, विष्णु अर्चे शिला दी स नारकी। भगवान विष्णु के अर्च वगैरह को जो शिला समझता है स, बिना अर्जन के नरक में रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा उसका, उसकी बर्थ सीट कंफर्म। इतना भी वेटिंग में खड़ा ही नहीं रहना पड़ेगा उसको, उसका सीधा कंफर्मेशन मिलेगा उसको। तो दारू शब्द पर हम बोल रहे थे जगन्नाथ जी के, वहां पर भी भागवत में दारू में ही आया है, लकड़ी की लक लक वहां लकड़ी अर्थ है। तो श्री जगन्नाथ को दारू ब्रह्म कहते हैं, और हमारे इस्कॉन के तो इस्कॉन में तो प्रथम श्री विग्रह कौन है, श्री जगन्नाथ। प्रभुपाद ने सबसे पहला इस्कॉन बनाया 1965 में, जब वो यहां से गए 66 में न्यूयॉर्क में स्थापना की, प्रथम विग्रह कौन है इस्कॉन का, जगन्नाथ। क्योंकि कलयुग के यही प्रकट विग्रह है ना, तथा आप सब जानते होंगे वो हमारी प्रभुपाद की शिष्या मालती माता जी, वो किसी सैन फ्रांसिस्को में, उस समय तो सब वो हिप्पी लोग थे ना, अब हैप्पी थे, लेकिन उस समय क्या थे सब, ये सब हिप्पी थे। तो कोई हिप्पी लोगों का अलग आप नेचर, एक तो नशा लेते हैं, ऊपर से उसको कोई ज्ञान तत्व उससे तो कोई मतलब ही नहीं होता, उनका केवल आलस में पड़ा रहना और सेंस ग्रेटिफिकेशन, केवल इंद्रिय तृपण करना, उनका यही काम होता है हिप्पी लोगों का। और प्रभुपाद जी के पास पहले यही लोग यही सब आए थे वहां पर, बाद में प्रभुपाद के संग से शुद्ध हो गए, हैप्पी बन गए, वो अलग बात है, संत की कृपा से तो क्या नहीं हो सकता। तो किसी प्रभुपाद के सत्संग ऐसे जाती थी तो मानती थी उनको स्वामी जी, उनका प्रवचन को अच्छा लगता था, जो पवित्रता सबको खींच लेती है ना, प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद साधु थे, शुद्ध थे, तो इसलिए सत्य बोलते थे, इसलिए वो सब लोग लाइक करते थे, उनको पसंद करते, उनकी उनका सुनते थे, तो अपने बाप का भी नहीं सुनते थे लोग, लेकिन प्रभुपाद का सुनते थे साधु का, क्योंकि उसको लगता था कि ये हमारा हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे हित के लिए। जो स्वार्थ शून्य वाक्य होता है ना, वो हृदय में जाता है। अगर आपके आप प्रवचन तो सब करते हैं, लेकिन स्वार्थ होता है पद का, धन का, या कुछ 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 जो भी कचरा हो, तो हृदय में नहीं जाता, और कुछ समय के लिए जाएगा, फिर पहचान लिए जाएंगे, हाँ क्यों हो रहा है सब ले। कुछ दिनों तक आप उल्लू बना सकते हो किसी को, बाद में तो पकड़े जाओगे ना। लेकिन शुद्ध साधु होता है वो संग दोष हराई दे, वो पाप हर लेता है, अज्ञान हर लेता है, और उसे प्रेमी बना देता है, शुद्ध कर देता है। श्रील प्रभुपाद उस कैटेगरी में है ना, शुद्ध साधु है, और यही हुआ। तो वहां गई मालती माता जी, वो एक किसी इंडियन स्टोर में, वो सब अमेरिकन स्टोर है, लेकिन उसमें कुछ इंडियन आइटम, वो क्या बोलते हैं आप लोग, वो जब इंडिया से जब जाता है जहाज में माल, हम देखे हैं केन्या में, तो वहां जाता है जो माल तो गोडाउन में जाता है पहले, वो ऐसे प्लेन से ले जाना तो बहुत खर्चा होता है, वो उससे जाना जहाज से जाता है वायु ये जल के जलयान से स्टीमर आदि से, और उसमें रीजनेबल में माल पहुंचता है वहां पर, और उस क्वांटिटी में भी जाता है, और वो जब गोडाउन से जाता है, गोडाउन से जब स्टोर में आता है, जो जो भी मंगाया है वो डिलीवरी से लेता है, तो वो पोर्ट होता है ना, किसी पात्र में भरा होता है या पेटी में या अलग अलग। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की गुड़िया तीन तीन वो कोई लाया था उस स्टोर में, और उसी को मालती देवी ने देख लिया, वो ऐसे ही घूमने गई थी देखने, पैसा वैसा कुछ था नहीं उनके पास। आप सुनेंगे आश्चर्य करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए इस कथा को, इस्कॉन में जगन्नाथ जी कैसे आए पहले, समझने लायक बात है। वो मालती देवी ने उस तीनों उस गुड़ियों के बैग को देखा, उसमें जगन्नाथ जी को उठाया, छोटे से थे इतने बस जगन्नाथ जी, जगन्नाथ देख रहे आप काले उसका क्या कैसे विग्रह होता है, और वो लिखा था मेड इन इंडिया, इंडिया से है ये जो कार्टून है इंडिया से आया हुआ है, तो उसको पकड़ा उसने। और उस समय वो लोग हिप्पी लोग क्या क्या चेतना क्या भावना क्या बुद्धि रखते थे मालूम है, पैसे वैसे तो कुछ था नहीं, चोरी कर लेते थे, कुछ भी वस्तु पसंद आया ध्यान नहीं उठाया, और वो लोग इसको अच्छा मानते, वो लोग मानते थे कि ये मूर्ति ये वस्तु दुकान में कैद है, इसको मुक्त करना ये अच्छा है। किसी वस्तु को दुकान से उठा लेना वो क्या मानते थे, वस्तु को फ्री किया मुक्त किया, तो बेचारा कैद पड़ा है अंदर काट में किसी स्टोर में, तो फिर मालती देवी ने जगन्नाथ को मुक्त किया, किसी को पता नहीं चला तो उठा लिया, पूरे दुनिया को जो मुक्त करता है उनको भी मुक्त कर दिया। और लाए प्रभुपाद के पास, उसको पता था ये स्वामी जी दिखाया कि इंडियन है, इंडिया की बात कर रहे, इनको जरूर पसंद करेंगे, उनको पता नहीं क्या भगवान क्या जगन्नाथ कोई मतलब नहीं, और प्रभुपाद के सामने जैसे ही इसको निकाल के रखा तो प्रभुपाद दंडवत प्रणाम किए उसको। वो भी हंसते थे, प्रणाम क्यों कर रहे हैं इसको लोग, गुड़िया को, डॉल को। प्रभुपाद ने कहां से उठाए, कहां से लाए? उसने कहा एक स्टोर से लाई। जानती हो कौन है? नहीं, ये भगवान है। भगवान की चिड़िया का नाम उसको बता ही नहीं, भगवान भगवत तत्व से उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन उसको प्रभुपाद की बात पर विश्वास था, एक साधु की शुद्धता से वो आकृष्ट थे, इसलिए उस पर विश्वास था। मालती देवी जी को, अब मालती देवी नाम है, तो उसने उठाया उसको, प्रभुपाद ने उसको प्रणाम किया, बोले ये लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ये जगन्नाथ है। इसके साथ और दो गुटिया थी, बोले हाँ थी, एक व्हाइट कलर की एक पीली, बोले उठाओ लेकिन अभी पैसा देके लाना, मुक्त नहीं करना उसको। उसने सत्य भी बता दिया कि मैं ऐसे उठाई हूँ गुरु के साथ कि मैं इसको ऐसे, क्योंकि पता है प्रभुपाद ने पैसा नहीं, बोले अब मुक्त मत करना, जो दो बाजू वाले दो बाजू में गुड़िया थी उसको भी उठा के ला है। तो फिर ये दूसरी फिर खरीद लाए दो गुड़िया, दो गुड़िया मतलब बलराम सुभद्रा और उसके पति थे श्याम सुंदर प्रभु। उसको उसने कहा कि इसको आप, वो कारपेंटर थे उस समय, मिस्त्री काम करते थे सैन फ्रांसिस्को में, बड़े पढ़े लिखे हैं आज भी है, लेकिन वो मिस्त्री काम में ज्यादा डॉलर मिलता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग काम नहीं करते ना, काम करने का ज्यादा मिलता था। वो इंजीनियर को जितना नहीं मिलता उतना मिस्त्री को मिलता है उधर, क्योंकि इंजीनियर ये लिखा पढ़ी कर सकता है लेकिन काम कौन करेगा, काम करने में ज्यादा डॉलर मिलता है उन लोगों को। प्रभुपाद ने कहा कि आप इसको दो फुट के बना सकते हो विग्रह? बोले हाँ, उसमें क्या है, हम लोग देख देख के बना सकते हैं। प्रभुपाद ने बनाओ उसको। उसकी बनाने की बात बड़ी अजीब है भाई, आप जानते हैं मिस्त्री लोग काम कैसे करते हैं, वो लकड़ा होता है उसके ऊपर एक पांव रखते हैं, देखे ऐसे ही बलराम के ऊपर रखा। प्रभुपाद ने देखा क्या कर रहे हैं, भगवान है इसको, ऐसे थोड़ा आराम से बनाओ उसको, तो क्या लग, तो उनको तो कैसे भी मेल में आना चाहिए बस काम करने के लिए। दूसरा आश्चर्य देखा कि एक सिगरेट का पैकेट उसके ऊपर पड़ा था पीते हुए बनारस। अब बताओ ये दशा थी, आप सुनिए इस बात को, हमारे इस्कॉन की मूल, लेकिन एक इसको हम देख आज भी श्याम सुंदर प्रभु मालती देवी है इसको प्रवचन करते रोने लगते इस बात को देखे, वो याद करते कि हम लोग कितने नीच गिरे हुए थे, लेकिन धन्य शिल प्रभुपाद, ऐसे तो हमारे जैसे एक दो नहीं करोड़ों का उसने उद्धार कर दिया कृष्ण भक्ति में लगा दिया। वो लोग रोज आते इस बात में कितने निम्न थे हम लोग, लेकिन कहां पहुंचा दिया प्रभुपाद जी ने, वो सिगरेट का पैकेट बलराम जी के ऊपर रखते थे और फिर काम करते हुए फिर मिस्त्री लोग कैसे होते ना। अब इसे मिस्त्री को मास्टर बना दिया प्रभुपाद, क्या कर रहा है? बोले बोले ढाई इसकी वस्तु तुम्हारे और भगवान के बीच में आ रही है, उसको छोड़ नहीं सकते तुम। बस बात हृदय में लग गई प्रभुपाद, उसी सीन से छोड़ दिया उसने। सिगरेट तो इतनी होती ना ढाई की, अभी बड़ी बड़ी भी आती है लेकिन उतनी होगी पता नहीं, तो छोड़ दिया तब से उसने, शुद्ध हो गया। लेकिन फिर उसने प्रभु फिर बड़े विग्रह बनाए जगन्नाथ जी के सैन फ्रांसिस्को में, और ट्रक में पहला रथ यात्रा निकला 1966 में सैन फ्रांसिस्को में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जो हमारे पूरी धाम में अषाढ़ी बीज को निकलता था, प्राचीन और पवित्र महोत्सव रथ यात्रा जगन्नाथ जी का। लेकिन श्री प्रभुपाद की कृपा से सात समुद्र पार विदेश की धरती पर सैन फ्रांसिस्को में भी जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, सब लोग पसंद किए वहां के लोग भी, क्योंकि प्रसाद कीर्तन दर्शन एक अलग ही माहौल, एक अलग ही आनंद था उस समय और तब से आज तक चल रहा है। और फिर तो ये बिगिनिंग था, ये क्या था, शुरुआत था। फिर तो फिर वहां से लंदन पहुंचे, दूसरा स्टीम वहां से, फिर दूसरा केंद्र लंदन, फिर तो बढ़ता गया। आज विश्व के कितने देशों में, कितने शहरों में रथ यात्रा हो रही है। हम कुछ दिन पहले कलकत्ता इस्कॉन में थे, प्रोग्राम के लिए गए थे, तो बहुत लोग हमको ले गए जहां राधा गोविंद देव का मंदिर, जहां प्रभुपाद जी 5 साल में रथ यात्रा निकालते थे, गवर्नमेंट डे से अपने पिताजी से जीत करके रथ मांग के बनवाए थे। तो भक्त लोग कहे प्रभु जी आप चलिए हम आपको दिखाते हैं रथ यात्रा जगन्नाथ, प्रभुपाद जी कहां पहले और राधा गोविंद देव का दर्शन करते थे, बड़ा सुंदर दर्शन है। राधा रानी भी कृष्ण की तरह ही खड़ी है वहां भी, ऐसे कृष्ण कैसे खड़े है देखे ना, हमारी राधा रानी तो सीधी खड़ी है लेकिन वहां तो राधा रानी भी कृष्ण की स्टाइल में खड़े, उनके चरण भी ऐसे ही है दोनों, वहां नित्य चरण दर्शन होता है गोविंद देव मंदिर, जो प्रभुपाद उसकी माता उनको नित्य दर्शन के लिए ले जाती थी राधा गोविंद देव मंदिर। और प्रभुपाद उसकी कॉलोनी में आजू बाजू में रथ यात्रा जब छोटे से तब से निकालते थे 5 वर्ष की आयु से, और जब बड़े हुए तब तब देश विदेश में, और इतना शुद्ध साधुता देखिए कि वो नहीं है तो आज अनंत गुना रतिया का निकल नहीं है, फिर भी उनकी कृपा से आज लाखों लोग जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, उनका प्रसाद खा रहे हैं, उनको रथे तो वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। व्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा है रथ के ऊपर खड़े हुए श्री कृष्ण को कोई एक बार भी देख लेता है उसको माँ के गर्भ में फिर नहीं जाना पड़ता। कितना फिर गीता में तो लिखा है जानना पड़ेगा सुनना पड़ेगा, इसमें तो केवल देखना है, वो तो पूरा ग्रंथ सुनना पड़ेगा। गीता में भी है यद्गतवान ये जो तत्व मुझे जान लेता है पुनर्जन्म, लेकिन इससे अच्छा ये है रथे तो वामनम दृष्टवा लड्डू खाया रथ को देखा हरि बोल, कितना फ्री बताओ इससे। इतना कलयुग में कितना सेल मिलेगा, हमारे चांद को भी शुभ बता रहे थे कलयुग में सेल है, इससे बड़ा क्या सेल होगा। नित्यानंद प्रभु सब कृपा करने के लिए प्रकट हुए, लेकिन ये सारी कृपा का भंडार श्री जगन्नाथ जी का हम और आपको प्राप्त हो रहा है वैष्णव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उनकी परंपरा में आने वाले भक्तों की कृपा से। और जो इस जगन्नाथ जी की कृपा को उनके प्रसाद को उनकी लाभ लेना चाहता है उसके लिए चाहिए कि पहले उसके भक्तों की शरण ले। भगवान के भक्तों की शरण लेने से ही सिद्धि तक पहुंचा जा सकता है, प्रभुपाद की शरण लेने से ये सब पाश्चात्य देशवासी आज गुरु बन गए हैं, इतने उच्च स्तर पर आ गए। ये विष्णु कृपा का पहले वैष्णव कृपा जरूरी है, क्योंकि विष्णु की कृपा तो वैष्णव कृपा के पीछे पीछे चलती है, स्वतंत्र नहीं है। वैष्णव जिस पर कृपा कर दे उस पर भगवान को करना ही पड़ता है, फिर वो कैसा भी, ये सिद्धांत है। इसीलिए तो प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा थे, कितना बज गया घड़ी में 2:10 हो गया, टाइम इज फिनिश, महाप्रसाद है गोविंद हो गया। प्रताप रुद्र पर भगवान की बड़ी कृपा है जगन्नाथ जी की, लेकिन समय हो गया तो हम यहीं पर समा, पता नहीं रहा हमको भी आधा पौना घंटा तो कहीं निकल जाता है। नहीं ऐसे नहीं हो तो आप लोगों को नहीं पता, जो अथॉरिटी बोलता है उसको सुनना पड़ेगा ना। आप 2 बजे, क्योंकि ऐसे 10 मिनट नहीं 20 मिनट है, 2:30 को होता है, लेकिन आज रथ यात्रा है तो सभी भक्तों को बड़ा ज्यादा ज्यादा प्रसाद खाना है और जल्दी जल्दी खाना है। रथ यात्रा में तो जाने के लिए प्रसाद ज्यादा चाहिए ना, थोड़ा काम और फिर रथ यात्रा में जाना है वहां पर, इसलिए तो इतना ही। कथा का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बात प्रताप रुद्र की याद करके एक प्यार गा लेता हूं अपने सुख के लिए, कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा रथ यात्रा में प्रताप रुद्र को मिली, वो दर्शन देना ही नहीं चाहते, सब भक्तों ने प्रार्थना की, तो प्रताप रुद्र जब रथ यात्रा के समय महाप्रभु नाच रहे थे और उसको देखने के लिए टोली में आ गए थे कीर्तन के लिए, रथ यात्रा मतलब मेन कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने यही परिपाटी सिखाया ना, कीर्तन बढ़िया से बड़ी मंडली रची, बहुत कीर्तन, खुद भी कीर्तन किए बढ़िया से, और वो एक हरिचंदन नाम का सेवक था प्रताप रुद्र के साथ। राजा तो ऐसे नहीं चलते ना, सेवक लोग चाहते ही होते हैं। तो बड़ी टोली मंडली जमी थी, बीच में चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, तो श्रीवास ठाकुर ऐसे खड़े थे पंचतत्व वाले, और ये लोला राजा आ रहा है, महाराज आ रहा है, हटो हटो कर रहा था, ये भगवान को देख रहे थे, हटो हटो राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। प्रताप रुद्र तो पीछे खड़े थे कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इसका सेवक हरिचंदन हटा और हटा हटा कर रहा था। श्रीवास ठाकुर को कृपा देनी थी, उल्टा घूमे और एक लगाया दाहिने हाथ लेफ्ट हैंड का उसके चपट पर, हरिचंदन चुप हटा हटा राजा आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसको चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखना था, उसमें मग्न हो गए थे श्रीवास, और ये पीछे से हटो हटो कर रहा था। तो अभी ये क्या करे, तो अभी ये भी गुस्से में आगे बोले मेरे को मारा, अभी रथ यात्रा है, अभी दूसरा युद्ध चालू होगा महाभारत, अभी ऐसे चल रहा। तब प्रताप ने कहा रुको रुको, क्योंकि वो राजा थे ना, उनका सेवक था जिसको मार खाया। भाग्यवान तुमी इहार हस्त स्पर्श पाइल, बोले तुम बड़े भाग्यवान हो, श्रीवास ठाकुर के हाथ का चापट खाया, ऐसा नहीं बोला, स्पर्श पाइलो। अरे बड़े बड़े तीर तीस के स्नान करने के लिए तरसते हैं, श्रीवास ठाकुर का हाथ तुमको लग गया नहीं स्पर्श हो गया, बड़े भाग्यवान हो तुम, अमार भाग्य नहीं तुम्हें कृतार्थ रही ल, मैं दुर्भाग्यशाली, काश ये थापट मुझे पड़ा होता, कैसे भी हो किसी भक्त का हाथ लग जाए ना, पाप नष्ट हो जाते, प्रेम हृदय में आ जाता, हमको पता नहीं चलता ये सब। प्रताप रुद्र ये जानते थे कि क्या भक्त की महिमा है, और उसी भक्त ने जो प्लान बताया, जैसे चैतन्य महाप्रभु आराम करने गए वो वहीं पहुंच गए, और वहीं जाकर गोपी गीत गाते थे, आप सबको पता है। चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छित अवस्था से बाहर आए, बोले प्रभु कहे के तुमी करीला मोर हित, कौन हो तुम? तुमने मेरा सबसे बड़ा हित किया प्रताप रुद्र, तुम वो जानते, ऐसे तो जानते लेकिन भाव में थे ना।
प्रभु कहे के तुम करिला मोरा ही, अचंबी से आसी पिया कृष्ण लीला अमृत।
अचानक यहां आ गए और मेरे को कृष्ण की कथा का अमृत पिला रहे हो, तुमने सबसे बड़ा मेरा हित किया है, बताओ तुम कौन हो?
जब महाप्रभु ने पूछा तो प्रताप रुद्र ने क्या कहा, ओडिशा के राजा थे बड़े, हजारों उनके नौकर थे लेकिन आईडी कार्ड लेकर नहीं गए थे, जैसे हम लोग मैं ये हूं मैं वो हूं कुछ, और ना चेले चपट से बोले, बोले बताओ मैं कौन हूं, तो हम लोग भी होते ना, बताओ इसको मैं कौन हूं? कुछ नहीं हो तुम, भाड़े के टट्टू हो लेकिन कौन बताए तुम? लेकिन देखिए राजा प्रताप रुद्र वो कहते हैं, राजा कहे आमी तुमार दासे रनो दास।
हे प्रभु मैं तो आपके दासों के दासों का दास हूं। देखो प्रताप रुद्र ने क्या कहा,
राजा कहे प्रभु आमी तुमार दासे रनो दास, भृत्यर भृत्य कर यही मोर आश।
मेरी एक ही आशा है कि आप मुझे अपने दासों के दासों के दास में रूप में मुझे स्वीकार कर लीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु उठ गए प्रेम भरा कलेवर राधा भाव से और महामंत्र के मस्त मंगलमय प्रेम कीर्तन में उसका शरीर पूरा प्रेममय बन चुका था, और उसने महाप्रभु ने उठकर उस प्रताप रुद्र को क्या कर लिया, गले अखबार में भर लिया, भूरी दा करके महाप्रभु गाने लगे, रोने लगे, नाचने लगे, और प्रताप रुद्र भी आज धन्य हो गए, प्रेम से वो भी पथ पथ हो गए, पूरा प्रेम में डूब गए। ये है रथ यात्रा कि हमें कीर्तन करना है, कृष्ण लीला को सुनना, इस भाव को प्रकट करना है, केवल धक्का मस्ती और ये हटो 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 मैं भी ठीक हूं मैं भी ठीक हूं मैं भी ठीक, ओके ये मूड ठीक है, लेकिन साथ साथ में हरि नाम को गाना, हरि नाम को, इन लीलाओं को याद करना है। महाप्रभु कैसे रथ यात्रा में ले, प्रताप रुद्र ने क्या किया, क्यों रथ यात्रा हो रही है, क्या मूड है, जय जय जब देखे जगन्नाथ सुभद्रा राम साथ आइला आमी कुरुक्षेत्र, महाप्रभु राधा भाव में आ जाते थे कि मैं कुरुक्षेत्र में पहुंच गया, कृष्ण का मिलन राधा रानी के कुरुक्षेत्र में हुआ था, भागवत में कथा है, यही वृंदावन जाने का मूड है, यही तो रथ यात्रा है। तो इस तरह इन लीलाओं को सुनना फिर इसका स्मरण करना, इसी को भक्ति कहते हैं, और यही हम करना है, श्री प्रभुपाद की कृपा से ही हमें अवसर मिला है। तो ओके नाउ वी आर फिनिश, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, धन्यवाद आप भक्तों का, मैं कुछ ज्यादा नहीं बताया, जो मन में आया वो कहा, लेकिन हमने सब याद किया कि वैसे भगवान के भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा आती है, और विशेष प्रभुपाद की और जगन्नाथ जी की इस्कॉन के ऊपर बड़ी कृपा है, हम सब भक्तों की इनका लाभ लेकर जीवन को धन्य करना चाहिए। धन्यवाद देते हुए महामंत्र से वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा हरे
बहुत बहुत धन्यवाद श्री के सुंदर कृष्ण प्रभु।